बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरीवरधारी, गोपी जना वल्लभा गिरीवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभा गिरीवरधारी, गोपी जना वल्लभा गिरीवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परियोजकाचार्य अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद् अभयचरणविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परियोजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम के नवें स्कंध में से तीसरे अध्याय के नवें श्लोक पर चर्चा करेंगे। बस सब लोग दोहराइए मेरे पीछे, तात अभिप्रायम आज्ञाया प्रादाद् दुहितरं मुने कृच्छ्रात् मुक्ता तम् आमन्त्र्या पुरं प्रायात् समाहिता। तद् अभिप्रायमज्ञाया तद् अभिप्रायमज्ञाया प्रादादुहितरं मुने कृच्छ्रान्मुक्तस्तम् आमन्त्र्या पुरं प्रायात् समाहिता। तद् अभिप्रायम् आज्ञाया प्रादादुहितरं मुने कृच्छ्रान्मुक्तसमामन्त्र्या पुरं प्रायात् समाहिता। तद् अभिप्रायमाज्ञाय प्रादादुहितरं मुने कृच्छ्रान्मुक्तसमामन्त्र्या पुरं प्रायात् समाहिता। माता में से वही कर्म होता है। मेरे पीछे दोहराइए, तत् चमन मुनि का अभिप्राय प्रयोजन आज्ञाया समझकर प्रादाद प्रदान कर दिया दुहितरम अपनी पुत्री मुने चमन मुनि को कृच्छ्राद बड़ी कठिनाई से मुक्ता मुक्त बनाया तम मुनि को आमंत्र्या अनुमति लेकर पुरम अपने स्थान को प्रायात चला गया समाहिता अत्यधिक विचार मग्न। अनुवाद, अत्यंत विचार मग्न होकर और च्यवन मुनि के प्रयोजन को समझकर राजा शर्याति ने मुनि को अपनी कन्या दान में दे दी। इस प्रकार बड़ी मुश्किल से संकट से मुक्त होकर उसने च्यवन मुनि से अनुमति ली और घर लौट आया। तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा, राजा ने अपनी लड़की से सारी बात सुनकर च्यवन मुनि को यह अवश्य बताया होगा कि किस तरह उसकी पुत्री ने अनजाने ऐसा अपराध किया, किंतु मुनि ने राजा से पूछा कि उसकी पुत्री विवाहित है या नहीं। इस तरह राजा ने मुनि का अभिप्राय समझकर तद अभिप्रायम आज्ञाया तुरंत ही अपनी पुत्री को दान में दे दिया और शापित होने के संकट से बच गया। तब मुनि की आज्ञा से राजा घर लौट आया। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाचलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवामिष्टम् श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितामिश्च हे कृष्णसिन्धुं दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकाकांता राधाकांता नमोस्तुते। तप्तकांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अत्यंत विचार मग्न होकर और चवन मुनि के प्रयोजन को समझकर राजा शर्याति ने मुनि को अपनी कन्या दान में दे दी। इस प्रकार बड़ी मुश्किल से संकट से मुक्त होकर उसने चवन मुनि से अनुमति ली और घर लौट आया। तो हम श्रीमद्भागवतम के 9वें स्कंध में से यह अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सुकन्या तथा चवन मुनि का विवाह। तो आज के श्लोक में ये चर्चा है कि शर्याति महाराज शर्याति जो कि सुकन्या के पिता थे, जब उनके सारे मंत्रीगण और सैनिक ना उनको तकलीफ होने लगी ना, वो टॉयलेट नहीं जा पा रहे थे, बाथरूम नहीं जा पा रहे थे, तो राजा को तुरंत ही समझा कि कुछ तो कहीं गड़बड़ हुआ है। लेकिन पहले के जमाने में और आजकल के युग में एक अंतर है। पहले के जमाने में जो राजा थे वो आस्तिक हुआ करते थे, और आजकल का युग जो है नास्तिकों से भरा हुआ है। प्रभुपाद जी उदाहरण, प्रभुपाद जी नास्तिक का परिभाषा क्या है वो बताते हैं। नास्तिक अर्थात जो व्यक्ति ये सोचता है कि इस जगत की हर एक चीज जो है वो बस अपने आप ही कार्य कर रही है, न कोई भगवान है न कोई देवतागण है, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हम समझते हैं शास्त्रों में से कि इस जगत में हर एक चीज जो है वो भगवान के नियंत्रण में चलती है, डायरेक्ट सीधे भगवान के नियंत्रण में और इनडायरेक्टली ऑल्सो, मतलब भगवान के जो अनगिनत अंश हैं देवतागण उनके द्वारा भी ये जगत नियंत्रित होता है। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि हमारे जो शरीर है वो भी अनेक देवताओं के द्वारा नियंत्रित होता है। हमारी आंखें हैं वो सूर्य और चंद्र से द्वारा कंट्रोल होती हैं। इसलिए अगर आप कोई ज्योतिषी के पास चले जाएं तो वो बता भी सकता है कि किस समय जीवन के किस काल में आपके पास कौन सी तकलीफ आएगी, शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ, फाइनेंशियल तकलीफ, सब बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास दृष्टि होती है, ज्योतिष, ज्योतिष अर्थात ज्योति मतलब रोशनी और ईश मतलब भगवान की, तो ज्योतिष अर्थात जो भगवान के द्वारा दी गई आंखें हैं। श्री राधा द्विधारी और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। तो ज्योति अर्थात भगवान की दी हुई आंखें, ज्योतिष शास्त्र जो है उसको भगवान की आंखें मानी जाती हैं। जो उन आंखों से देखता है वो सही मायने में स्थिति को देख सकता है। तो जब राजा शर्याति ने देखा कि उनके सारे मंत्रीगण और सारे जो लोग थे वो टॉयलेट नहीं जा पा रहे थे, सबको एक जैसा समस्या खड़ा हो गया। तो आजकल के युग में होगा तो क्या बोलेंगे, अरे डॉक्टर के पास जाओ, कुछ शायद पानी में कंटामिनेशन आ गया होगा, सबका पेट खराब हो गया है, चलो हॉस्पिटल जाएंगे, भक्तिरत्न हॉस्पिटल जाके चेकअप करा लेंगे, है ना। लेकिन पहले के युग में ऐसा नहीं होता था, है डॉक्टर भी होते थे, ऐसा नहीं कि चिकित्सा नहीं करेंगे, लेकिन जब ऐसा कोई स्थिति खड़ा हो गया तो राजा सोच में पड़ जाते थे कि कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है, किसी ने कोई भयंकर अपराध किया हुआ है, किसी ऋषि मुनि का या देवता का या भगवान के प्रति या भगवान के किसी भक्त के प्रति अपराध किया है। तो बाकी सब चीज तो करना है लेकिन पहले उसकी जड़ तक जाना है। और आजकल क्योंकि नास्तिकों से भरा पड़ा है संसार, इसलिए लोगों की समस्याएं बढ़ती ही जाती हैं। अभी देखिए पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, अरे रिसेशन है, पैसे का कमी है सब जगह, तो ऐसी स्थिति में क्या सोचते हैं लोग, अरे मैं कैसे अपना धन संपत्ति बढ़ाऊं, बस लेकिन पहले के जमाने में राजा जो होते थे उनका कर्तव्य होता था कि सारी प्रजा का देखभाल करना। आजकल के जो मंत्री या राजागण हैं उनका कर्तव्य खाली एक ही है कि कैसे लोगों का खून लहू चूस कर अपना जेब भरना है, और इसीलिए न तो प्रजा कभी सुखी होती है राजा से, न ही कभी राजा संतुष्ट होता है। भगवद गीता के चौथे अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में वैसा बताते हैं, यह चक्षुरेश सविता सकला ग्रहाना राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा यस्या गया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि सूर्य को सारे ग्रहों का राजा माना जाता है, राजा समस्त सुर सारे देवताओं का सारे राजा ग्रहों का राजा माना जाता है सूर्य को। क्यों? क्योंकि वो देते हैं, क्या देते हैं? रोशनी देते हैं और गर्मी देते हैं। जरा सोचिए अगर सूर्य की रोशनी और गर्मी ना हो, ये हम लोग तो खैर यहां मुंबई में रहते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है इतना, लेकिन अगर आप चले जाइए दिल्ली वगैरह या कश्मीर चले जाइए या अमेरिका में चले जाइए तो वहां पर इतनी ठंडी पड़ती है क्योंकि सूरज बहुत कम दिखता है, वहां मोस्टली बादलों से घिरा रहता है आसमान, सूरज बहुत कम दिखता है और बहुत ठंडी होती है, इतनी भयंकर ठंडी होती है। तो सब लोग सूर्य की तहा रखते हैं कि कब सूरज निकलेगा तो थोड़ी गर्मी होगी। हम लोगों को यहाँ पे तो सोचते हैं अरे अरे कब थोड़ा बादल आ जाए तो कम हो जाए, बहुत गर्मी है सूरज की। लेकिन सूरज की गर्मी से और रोशनी से सारे पेड़ पौधे उगते हैं, हमको जो भोजन मिलता है वो भी सूरज की गर्मी के कारण ही मिलता है, शरीर को जो ताप वगैरह मिलता है वो भी सूरज की गर्मी के कारण मिलता है। तो सूरज देते हैं दो चीजें, गर्मी और रोशनी, इसीलिए सारे लोग उन्हें राजा मानते हैं, जो जरूरी है हमारे लिए वो प्रदान करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि राजा अर्थात जो लोगों को नियंत्रण करता है देने के द्वारा, ना कि चूसने के द्वारा, करे मैं इनको सब चूस लूं, सारा धन संपत्ति ले लूं इनसे, ये लोग गरीब रहेंगे तब मेरे अंदर में रहेंगे, तब मेरी बात सुनेंगे, नहीं। पहले के राजा प्रदान करते थे, देते थे ना? तो सब लोग देखते थे, अरे ये राजा तो इतना ऐश्वर्यशाली है, हमारी इतनी अच्छे से देखभाल करता है, तो सारी प्रजा अपने आप ही राजा के अधीन रहती थी, खुशी खुशी अधीन रहते थे। आजकल की तरह नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं ना, आते हैं मंत्री, अरे मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए, वोट दिया तो सब लोग सोचते हैं अरे कब इसको निकालें, यहां से धक्का मार के निकालो इस मंत्री को। लेकिन पहले के युग में राजा को लोग बड़ी चाहते थे, क्यों? क्योंकि राजा आस्तिक थे, अगर ऐसी कोई समस्या भी आ गई तो राजा केवल नास्तिक दृष्टि से उसका उपाय नहीं करते थे, उपाय करते थे कि इसके पीछे राज क्या है, क्या गड़बड़ हुई है। जैसे हम रामायण में से सुनते हैं जनक महाराज के राज्य में अकाल पड़ा, कुछ वर्षा नहीं हुई, अनावृष्टि हुई, कुछ वर्षा नहीं हो रही थी, क्यों? क्योंकि रावण ने उस पूरी भूमि को दूषित कर दिया था ऋषि मुनियों के रक्त से, जहां पे देवताओं का या ऋषि मुनियों का या भक्तों का रक्त गिरता है वो भूमि अपवित्र हो जाती है, तो सारे देवतागण अपनी जो जो कृपा है उस भूमि से निकाल लेते हैं, जहां पर गाय को या देवताओं ऋषि मुनियों को या भक्तों को पीड़ा दी जाती है, या स्त्रियों को पीड़ा दी जाती है, बच्चों को पीड़ा दी जाती है, वो भूमि अपवित्र हो जाती है। तो फिर वहां पे सारे देवता गण जो हैं अपनी कृपा निकाल देते हैं, कैसे कृपा निकाल लेते हैं? जैसे देखिए ये हमारे भारतवर्ष में, हमारे इंडिया में स्पेशली पूरा साल आप अन्न उगा सकते हैं, कहीं भी चले जाइए, महाराष्ट्र में, गुजरात में, भगवान की कृपा से भूमि इतनी उपजाऊ है और इतना अच्छा वातावरण है, सूरज की गर्मी हमेशा रहती है तो हम पूरा साल अनुगा सकते हैं। अमेरिका में रहते हैं जहां हम, न्यू वृंदावन में, वहां पे आप साल में मुश्किल से 3 महीने या 4 महीने कुछ उगा सकते हो, क्योंकि 4 महीने ही जो तापमान रहता है वो ऐसा रहता है कि कुछ उगाने लायक है। बाद में इतनी ठंडी हो जाती है कि कुछ भी उगाओगे तो सड़ जाता है, जल जाता है, क्योंकि इतनी ठंडी रहती है। अर्थात देवताओं का प्रकोप है वहां पर, रहने लायक जगह नहीं है वो। हालांकि लोग सोचते हैं अरे ये तो अमेरिका में लेके लोग बहुत ही संतुष्ट हैं, पैसा है, धन संपत्ति है। नहीं, रहने लायक जगह नहीं है वो। वहां पे प्रभुपाद जी की कृपा है कि प्रचार के हेतु भक्त लोग रह लेते हैं वहां पे, लेकिन रहने लायक जगह नहीं है वो। थोड़े दिन पहले ही मैं मायापुर में था तो एक भक्त मिले जो लगभग 12 साल तक रशिया में रहे। बोले प्रभु जी रशिया में तो खाने तक के अकाल पड़ता था, सब्जियां तक नहीं मिलती आपको वहां पे, लोग केवल मांसाहारी करते हैं क्योंकि पशु तो मिल जाते हैं, पशु तो रह लेते हैं ठंडी में, उनको मार के खाते रहते हैं। बोले अन्न और सब्जियां बिल्कुल ही ना की मात्रा में मिलती हैं। तो ये देवताओं का प्रकोप है, रहने लायक जगह नहीं, क्योंकि उस भूमि पर गायों को अत्यंत पीड़ा दी जाती है। और उसी प्रकार अगर इस देश में भी जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, जहां कहीं देखिए गायों को मारने के लिए बड़े बड़े कत्ल खाने खोल रहे हैं, और हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो ऐसी है कि फाइनेंस कर रही है, मैंने सुना कि ग्रांट दे रही है, मतलब नॉन रिफंडेबल लोन देते हैं कि आप ले लीजिए पैसा और बड़ा बड़ा कत्ल खाना खोलिए, क्योंकि गाय का मांस बाहर जाता है तो बहुत सारा धन संपत्ति आता है। लेकिन ये लोगों को ये नहीं समझता कि इससे भूमि अपवित्र हो जाती है और देवताओं का प्रकोप हो जाता है उस जगह पर। हम देख रहे हैं धीरे धीरे प्रकोप बढ़ रहा है ना। इस साल भी इतनी ठंडी पड़ी यहां मुंबई में जैसी कभी नहीं पड़ती है ना। सब लोग कह रहे थे कि इतनी ठंडी कभी नहीं पड़ती मुंबई में, बढ़ रही है ठंडी, तो प्रकोप बढ़ता है देवताओं का। जहां भूमि पर, जिस भूमि पर गाय को, ब्राह्मणों को, स्त्रियों को, बच्चों को और वैष्णवों को पीड़ा दी जाती है, वहां भूमि अपवित्र जाती है। तो जनक महाराज के राज्य में भी अनावृष्टि हो गई, वर्षा का अकाल हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जनक महाराज ने, चलो ठीक है हम जमीन में से कुछ पानी निकालेंगे, कुएं खुदवाएंगे, बारिश नहीं हो रही तो उस पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं। बारिश क्यों नहीं हो रही है तो उसका कुछ उपाय करेंगे, मंत्रियों से मिलकर, ब्राह्मणों से मिलकर उसका उपाय किया। और उपाय ये हुआ कि सीता माँ का जन्म हो गया। सीता माँ का जन्म होते ही अनावृष्टि समाप्त हो गई। तो ऐसे होते थे पहले के राजा। उसी प्रकार महाराज शर्याती ने जब देखा कि ऐसा कुछ समस्या खड़ा हो गया है, सबके साथ समस्या खड़ा हो गया है, तो उन्होंने इसका कारण जानने का प्रयत्न किया। जब उनकी बेटी ने बताया, सुकन्या ने बताया कि उन्होंने गलती से च्यवन मुनि की आंखें फोड़ दी हैं, तो महाराज शर्याती गए च्यवन मुनि के पास कि महाराज कृपया क्षमा करिए, मेरी बेटी ने गलती से आपकी आंखें फोड़ दी। तो ज्यों ही बताया कि मेरी बेटी ने गलती से आपकी आंखें फोड़ दी, तो च्यवन मुनि ने प्रश्न किया उनसे कि आपकी बेटी विवाहित है या अविवाहित है। तो राजा हैं आखिर समझ गए, मुनि का हृदय समझ गए कि उनको शायद पत्नी की अभिलाषा है, नहीं तो क्यों पूछेगा कोई, है ना, कि आपकी पत्नी, आपकी बेटी विवाहित है या नहीं। तो बोले नहीं, मेरी बेटी विवाहित नहीं है। और यूं समझते ही उन्होंने तुरंत अपनी बेटी जो है उनसे विवाह करवा दिया, च्यवन मुनि का दान में दे दी च्यवन मुनि को, और च्यवन मुनि संतुष्ट हो गए। तो इस प्रकार महाराज शर्याती ने उस समस्या का समाधान किया। तो कहने का अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति राजा की स्थिति में है या लोगों के मार्गदर्शन करने की स्थिति में है, उसे चीज को, हर एक स्थिति को शास्त्रों की दृष्टि से देखना चाहिए। शास्त्र चक्षुवत, प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्रों के चक्षु से द्वारा देखना। चाणक्य पंडित कहते हैं इस संसार में लोग अलग अलग चक्षु से देखते हैं ना? जो पशु होते हैं वो सूंघने के द्वारा देखते हैं। देखिए गाय वगैरह होगा या अन्य पशु होते हैं सूंघने जाते हैं ये क्या है खाने लायक है कि नहीं, तो वो देखते हैं अपनी आंखों से नहीं नाक से देखते हैं ये खाने लायक है कि नहीं। और राजा जो है वो देखते हैं अपने जो सीक्रेट एजेंट मतलब स्पाई को क्या बोलते हैं गुप्तचर, वो देखते हैं गुप्तचर की आंखों के द्वारा। अरे ये राजा आया है मेरे साथ मित्रता करने, लेकिन गुप्तचर बताएगा नहीं महाराज ये तो बहुत ही ईर्ष्या रखता है आपसे मारने के लिए आया है आपको। ठीक है तो मित्र की दृष्टि से नहीं देखेगा, सामने से भले ही मित्रता दिखा रहा है लेकिन मित्र की दृष्टि से नहीं देखेगा, गुप्तचर की दृष्टि से देखते हैं राजा। और ब्राह्मण जो है वो शास्त्र की चक्षु से देखते हैं चीज को। वैष्णव होते हैं या ब्राह्मण होते हैं वो शास्त्र के चक्षु से देखते हैं। जैसे आजकल स्कूल में पढ़ाया जाता है ना कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की तरफ घूम रही है चारों तरफ, सब स्कूलों में पढ़ाया जाता है, यहां पे पाश्चात्य देशों में सब जगह पूरे पृथ्वी पे यही पढ़ाया जाता है। और सब लोग यही सोचते हैं कि सूरज एक जगह स्थित है और सारे ग्रह पृथ्वी भी उनकी तरफ घूम रही है, लेकिन शास्त्र कहते हैं नहीं पृथ्वी एक जगह स्थित है और सूर्य और सारे ग्रह जो हैं उनके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो प्रभुपाद भी जब पाश्चात्य देश में प्रचार करने गए तो सारे पाश्चात्य देशों के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक आते या पढ़े लिखे लोग आते उनके साथ इस बातें भी आर्ग्यू करते थे प्रभुपाद, नहीं ये सब बकवास है आप जो बोलते हो सब बकवास है, शास्त्र ऐसा कहते हैं इसलिए ऐसा ही है। और सामान्य लोग जो हैं वो देखते हैं अपनी आंखों से, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो केवल अपनी आंखों से देखते हैं। तो इसी तरह कोई भी व्यक्ति जो है जिसने लोगों का मार्गदर्शन करने का जिम्मेदारी लिया हुआ है, चाहे वो मंदिर के प्रेसिडेंट हों या कोई ब्रह्मचारी हो जो अन्य लोगों का मार्गदर्शन करते हैं या कोई देश का राजा ही क्यों ना हो, उसका कर्तव्य होता है शास्त्र के चक्षु से देखना, हर स्थिति को शास्त्र की आंखों से देखना, क्योंकि शास्त्र की आंखों से देखने के द्वारा हम सही स्थिति को देख सकते हैं। अपनी भौतिक दृष्टि से देखने के द्वारा हम सही स्थिति नहीं देख पाएंगे। जैसे ना आप डॉक्टर के पास चले जाइए तो डॉक्टर क्या करते हैं, आप बोलेंगे डॉक्टर साहब पेट में बहुत दुख रहा है ये लो गोली ले लो, ऐसा दे देंगे नहीं, अच्छा भाई पेट दुख रहा है क्यों दुख रहा है, क्या खाया था कल, क्या किया था आपने कुछ, फिर कुछ पेट का डाइजेशन पूरा क्या कहते हैं अलग अलग तरह का टेस्ट लेंगे आपका, बोलेंगे शायद स्टूल यूरिन चेक करेंगे उसके बाद कुछ निरीक्षण पर आकर ही कोई दवाई देंगे, है ना, क्यों, क्योंकि जो चिकित्सक हैं डॉक्टर हैं वो जानना चाहते हैं कि आपके पेट में दर्द हो क्यों रहा है, कहां से आया ये दर्द, क्या कारण है इसका, क्योंकि अगर कारण नहीं मालूम ऐसे ही दवाई दे दी तो शायद पेट का दर्द चला जाएगा लेकिन फिर से कोई और बड़ा समस्या आ जाएगा। तो उसी प्रकार जो भी व्यक्ति मार्गदर्शन करते हैं किसी का, हर एक समस्या को शास्त्र की दृष्टि से देखना चाहिए कि इसका मूल कारण क्या है, क्यों ये समस्या खड़ा हुआ है, और तभी हम किसी भी समस्या का सही दृष्टि से समाधान कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जब श्रील भक्ति चरण ठाकुर से पहली बार मिले उल्डन जंक्शन रोड पर कलकत्ता में, अपने मित्र के साथ गए श्रील भक्ति चरण ठाकुर से मिलने, तो जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने प्रणाम किया भक्ति चरण ठाकुर महाराज को, भक्ति चरण ठाकुर महाराज ने कहा आप पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं आपको अंग्रेजी भाषा में ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रचार करना चाहिए अंग्रेजी भाषा में। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तुरंत उनसे आर्ग्यूमेंट किया कि लेकिन हम लोग तो स्वतंत्र नहीं है, हम तो पराधीन है, ब्रिटिश के अधीन है हम लोग, तो कौन हमारी बात को सुनेगा, कौन इस महाप्रभु के इस मैसेज को सुनेगा? तो पहले हमें गांधी जी को सपोर्ट करना चाहिए, गांधी जी को सहयोग देकर इस देश को स्वतंत्र करना चाहिए, बाद में सब लोग सुनेंगे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, नहीं तो कौन सुनेगा? भक्ति संस्थाकों ने कहा नहीं, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो तुरंत उनका प्रचार होना चाहिए। शिला पापा जी बताएं, भक्तिनाथ ठाकुर कहा करते थे, शिला भक्तिनाथ ठाकुर महाराज कहते थे कि इस संसार में केवल एक ही समस्या है, वो है कृष्ण भावनामृत का अभाव, और इस संसार की सारे समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन, एक ही केवल उसका सॉल्यूशन इलाज है, वो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। इस संसार में और कोई समस्या नहीं है, समस्या केवल एक ही है कि लोग कृष्ण भावनामृत नहीं है, और ये सच है। मुझे याद है मैं लगभग 18 साल पहले जब भक्तों ने मुझे कृष्ण भावनामृत के बारे में बताया तो कोई एक भक्त बोल रहे थे मेरे को कि आप ये जान लीजिए कि इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं ना उनका उत्तर या उनका इलाज जो है इस भगवत गीता में, उनका समाधान भगवत गीता में है। तो मैं तो जैसे साधारण लोगों को पता नहीं होता भगवत गीता क्या है, इन्होंने कितनी बड़ी है, मैंने पूछा भाई भगवत गीता कितना बड़ा है, तो बोले 700 श्लोक हैं इसमें, 700 श्लोक अर्थात 700 हिंदी में संस्कृत के लिखे हुए सेंटेंसेस, 700 खाली सेंटेंसेस हैं उसमें संस्कृत। तो एक मिनट, केवल 700 सेंटेंस में सारे संसार के समाधान आ गए समस्याओं के, ये कैसे संभव है? मैं नहीं मानता इस बात को। बोले नहीं आप पढ़ के देखिए, जितने भी समस्याएं हैं संसार की उन सबका समाधान भगवद गीता में है, और केवल 700 श्लोकों में ही है। तो एक बार माधव प्रभु रहा करते थे मीरा रोड में पहले, अभी तो शायद बेलगांव में कहीं रहते हैं, तो वो एक बार बता रहे थे कि एक समस्या ले लीजिए, मान लीजिए इकोलॉजी अर्थात इस संसार के जो वातावरण है प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषित वातावरण का क्या कारण है और भगवत गीता उसका समाधान कैसे दे सकता है? भगवान तो कहीं नहीं बताते कि इस वातावरण प्रदूषित हो रहा है, पानी दूषित हो रहा है, उसका कैसे समस्या का समाधान करना चाहिए, नहीं है ना? तो उसका समाधान कैसे गीता में दिया गया? तो बता रहे थे कि वातावरण दूषित क्यों होता है, वातावरण दूषित होता है जब व्यक्ति का मन दूषित हो जाता है। जब कोई बड़ा बिजनेसमैन है वो सोच रहा है मुझे बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाना है ताकि मैं बहुत पैसा कमा सकूं, और वो पैसा कमाने के लिए बड़ा फैक्ट्री लगाता है, और फैक्ट्री का जो जो गंदगी निकलेगी वो सब नदी में या वातावरण में फेंक देता है। लेकिन अगर इस व्यक्ति को बताया जाए कि भाई आप करोड़ों रुपए भी कमा लो तो क्या खाओगे आप? ब्रेकफास्ट में तो वही 2 रोटी खाएंगे, लंच में भी वही 2 या 4 रोटी खा लेंगे, डिनर में भी एक चावल का प्लेट और थोड़ा सब्जी खा लेंगे, और क्या खाएंगे? ऐसा तो नहीं कि मैं करोड़ों की संपत्ति है तो मैं एक बड़ा रोटियों का स्टैक खा लूंगा ब्रेकफास्ट में, नहीं, खाएंगे तो उतना ही 2 रोटी खा पाएंगे, है ना? तो फिर मूर्ख क्यों बन रहे हो, इतना क्यों परिश्रम कर रहे हो, इतना क्यों लालच कर रहे हो और वातावरण को दूषित कर रहे हो, है ना? काफी सोचने योग्य बात है। भगवान गीता में बताते हैं काम क्रोध था लोभ, 3 चीजें हैं जो नर्क का वातावरण पैदा कर देती हैं। आपको नर्क कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जब ये 3 चीजें होती हैं तो ये संसारी नर्क बन जाता है, काम क्रोध और लोभ। तो लोभ के द्वारा पूरे वातावरण को दूषित कर देते हैं, काम के द्वारा मन को दूषित कर देते हैं, और क्रोध के द्वारा पूरे संसार में लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। तो नर्क बन गया ना, जब वातावरण दूषित हो गया, मन दूषित हो गया और कहीं शांति ही नहीं है, कलह है हर जगह, तो ये नर्क बन गया। श्रील प्रभुपाद जी एक बार जुहू में चल रहे थे पैदल, तो कुछ भक्तों ने कहा प्रभुपाद यहाँ पे बहुत चूहे हैं। तो हाँ, क्योंकि आप जप नहीं करते हो अच्छे से। भक्तों ने बोला प्रभुपाद चूहों का जप से क्या संबंध है? बोले नहीं, चूहे क्यों आते हैं? जहां गंदगी होती है। और गंदगी कहां होती है? जहां हृदय गंदा होता है। और हृदय कहां गंदा होगा? जहां जप नहीं होता अच्छे से। तो क्योंकि आप लोग जप नहीं करते अच्छे से, इसीलिए आपका मन दूषित है, इसीलिए आप गंदगी रखते हो यहां पर। और गंदगी रखोगे तो चूहे आएंगे। सिंपल फॉर्मूला है ना। तो देखिए, इस संसार की जितनी भी समस्याएं हैं उनका एक्चुअली समाधान है कृष्ण भावनामृत में ही है। तो जो जो लोग समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, सचमुच में समाधान करना चाहते हैं, वो कृष्ण भावनामृत को प्रचार करते हैं, लोगों को कृष्ण भावनामृत देने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि अन्य सभी चीजें जो हैं वो अंततः जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में पैचवर्क है, पैचवर्क अर्थात इनम अभी यहां पे कुछ थोड़ा फोड़ी आ गई, लगा दिया मलम लगा दिया, फिर यहां पे फोड़ी आ जाती, यहां मलम लगा दिया, फिर यहां फोड़ी आ गई, यहां मलम लगा दिया, इसे पैचवर्क कहते हैं। कि समस्या के मूल कारण तक न जाकर केवल उसको समाधान करते रहना, बार बार समाधान करते रहना। तो कृष्ण भावनामृत जो है वही सही मान्य में हर समस्या का मूल रूप से समाधान करता है। और अगर ये कृष्ण भावनामृत के साथ साथ वर्णाश्रम की स्थापना की जाए, श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारे संस्था में वर्णाश्रम की स्थापना की जाए, उससे इस जगत की व्यवस्था जो है बहुत ही ठीक हो जाएगी। क्योंकि वर्णाश्रम की स्थापना अर्थात जो लोगों का मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं वो केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, वैश्य और शूद्र लोग लोगों का मार्गदर्शन नहीं करते। क्योंकि वो लोग मार्गदर्शन करेंगे मतलब वैश्य होगा तो खाली लोगों को बताएगा अरे पैसा, खाली पैसा ही सब कुछ है, और शूद्र होगा तो केवल केवास ही केवास होगा, पूरे पूरे संसार में केवल क्या कहते हैं उत्पात ही उत्पात होंगे। तो कृष्ण भावनामृत के साथ साथ अगर वर्णाश्रम का स्थापना हो तो इस संसार के सारे जो समस्याएं हैं उनका अच्छे से समाधान हो सकता है। और सब लोग इस संसार के जो लोग हैं बड़ी आसानी से इस जीवन काल को व्यतीत करते हुए, कृष्ण भावनामृत में व्यतीत करते हुए भगवान के धाम जा सकते हैं। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है कि जो पहले के राजागण होते थे वो हर एक स्थिति को शास्त्र की दृष्टि से देखते थे, केवल भौतिक दृष्टि से नहीं देखते थे। हम यहाँ पे समाप्त करें, किसी का अगर कोई प्रश्न वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, ऐसा है कि एक बार महाराज शर्याति अपनी सुकन्या और सारे मंत्रीगणों के साथ कहीं वन में गए हुए थे आश्रम, और इस वन में सुकन्या ने टहलते टहलते देखा कोई एंट हिल था, उस एंट हिल में दो बहुत ही चमकीले जैसे जैसे मोती होता है ना, जहां हीरे होते हैं ना, उसके जैसे कुछ चमकीली चीज दिख रही थी। तो उसे लगा शायद एंट हिल के अंदर वो चीटियों के घर के अंदर कुछ मोती वगैरह हैं, तो उसने कांटा लेकर उसे निकालने की कोशिश की कि मैं मोती निकाल लूं, लेकिन वो दो जो थे चवन मुनि की आंखें थी, तो अनजाने में लेकिन सुकन्या ने ये अपराध कर दिया, चवन मुनि की आंखें फोड़ दी। तो चवन मुनि क्रोधित हो गए, हालांकि वो तो ध्यान में थे इसलिए उनके ऊपर एंटल जमा हो गया था, उनको पता भी नहीं चला, इसलिए वो दिख भी नहीं रहे थे किसी को, तो क्रोधित हो गए। तो सारे जो मंत्रीगण थे, राजा थे, उनके मंत्री और सारे सैनिक थे, उनको समस्या हो गई, टॉयलेट नहीं जा पा रहे थे। तो तब राजा ने पता करने की प्रयत्न किया कि क्यों ऐसा हुआ। सुकन्या के द्वारा उन्हें पता चला कि क्योंकि उन्होंने अपराध किया था चवनमुनि, तो वही एपिसोड चल रहा। इसका और कोई प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।